27 अक्टूबर दिन भर दिन मंगलवार। मैं हूं रेहान फदल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 350 के पार पहुंची। प्रभावित इलाकों में राहत कर्मियों के पहुंचने में बाधा।
सुबह में न्यू रोड पर काम कर रहा, चावल की दुकान पर, तो फिर दौड़ा वो दूसरी साइड पर, फिर आया तो वापस ऊपर से बिल्डिंग गिर पड़े और मैं उसमें फंस गया दोनों पैर।
बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से।
दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और दूसरी बात है कि जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं वो कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, वो सेंटिमेंटल मुद्दा उभारना चाहते हैं, और जैसे गोमांस की बात करती है।
होंगे खेल समाचार भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी जिले शांगला पहुंचे हैं, जहां कल आए भूकंप में कम से कम 50 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा है कि इस भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने में पाकिस्तान समर्थ है। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से अपील की है कि वे एक दूसरे की मदद करें। दोनों देशों में करीब 350 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बचाव कार्यकर्ता कल आए भूकंप से प्रभावित दूर दराज के इलाकों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का कहना है कि उसने साउथ चाइना सी में अपने एक द्वीप के करीब आए एक अमरीकी युद्धपोत का पता लगाया और उसे चेतावनी भी दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमरीकी राजदूत को इसका विरोध दर्ज करने के लिए तलब किया है। चीन के विदेश मंत्री ने इस युद्धपोत को इतना करीब आने को गैरकानूनी करार दिया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि प्रवासियों और शरणार्थियों का संकट यूरोपीय संघ की एकजुटता पर प्रभाव डाल सकता है। यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सभी देशों ने मिलकर काम नहीं किया तो ये संकट यूरोपीय संघ की उपलब्धियों को नष्ट कर सकता है।
The crisis, or rather challenge, that we all of us as a community, as the European Union, are facing now.
यूरोपीय संघ के सामने आई ये चुनौती शायद दशकों बाद हमारे सामने आई सबसे बड़ी चुनौती है। मैं बिना किसी शक के ये कह सकता हूँ कि इस चुनौती से जो यूरोपीय संघ हमने बनाया है उसके बदलने की पूरी संभावना है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि इस चुनौती से यूरोपीय राजनीतिक परिदृश्य के बदलने का भी खतरा है। ये वक्त वाकई असाधारण है, जिसमें असाधारण बलिदान और एकता की जरूरत है। ये थे डोनाल्ड टस्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्वास्थ्य सेवाओं की जन कल्याण संस्था मेडिसिन सान फ्रंटिये का कहना है कि उत्तरी यमन में उसका एक अस्पताल सऊदी अरब के नेतृत्व में हुए हवाई हमलों का निशाना बना है। संस्था के मुताबिक सादा शहर स्थित इस अस्पताल की इमारत पर हमला हुआ। इस शहर पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। संस्था के एक डॉक्टर ने बीबीसी को बताया कि अस्पताल के उस हिस्से पर हमले हुए जिसका फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इससे मरीजों और लोगों को अस्पताल से बाहर निकलने का मौका मिल गया और इन हमलों में कोई नहीं मारा गया। इस हमले पर सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सीरिया से खबर आ रही है कि इस्लामिक स्टेट ने रविवार को पलमायरा के 3 प्राचीन खंभों से बांधकर 3 लोगों को बम से उड़ा दिया, लेकिन इस घटना की पुष्टि के लिए कोई वीडियो या तस्वीरें नहीं आई हैं। ये भी साफ नहीं है कि मृतक कौन थे और उन्हें क्यों मारा गया। इस साल की शुरुआत में ही IS ने पलमायरा पर कब्जा कर लिया था। चीन की सरकार सरकारी परीक्षाओं में नकल और इसके अपराधीकरण को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। जो छात्र नकल करते हैं या जो किसी और की जगह परीक्षा देने जाते हैं उन्हें पकड़े जाने पर 7 साल की कैद हो सकती है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप से हुई तबाही के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन दोनों ही देशों के राहत कर्मियों को दूर दराज के उन इलाकों में पहुंचने में काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है जहां भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के जिले शांगला के लिए हवाई दौरे पर निकल गए हैं, जहां सोमवार के भूकंप में कम से कम 50 लोगों की जान चली गई थी। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से जरूरतमंद लोगों को मदद करने की अपील की है। अब तक इन देशों में आधिकारिक तौर पर 350 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से अधिकतर लोग उत्तरी पाकिस्तान से हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
सोमवार को कड़कड़ाती ठंड के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित इलाकों में हजारों लोगों ने घर के बाहर रात गुजारनी पड़ी है। भूकंप के आफ्टर शॉक से डरे हुए ये लोग अपने घरों में लौटने से डरे हुए थे। बचाव और राहत दलों को उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के दुर्गम इलाकों में मदद के लिए भेजा गया है, जहां से कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें हैं। राहत और बचाव दल टेंट, कंबल और खाने पीने की सामग्री लेकर प्रभावित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सोशल मीडिया में जारी कुछ वीडियोज में इस इलाके में ढेर सारे भूस्खलन और टूटी हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं। इस इलाके के दुर्गम होने के चलते राहत कर्मियों को बचाव अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर टेलीविजन में प्रसारित अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के एक बयान में उन्होंने लोगों से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की है। मैं अफगानिस्तान के सभी लोगों से अपील करता हूं कि अगर वे प्रभावित इलाकों में हैं तो एक दूसरे की मदद करें। मैं लोगों से ये भी अपील करता हूं कि वे मृतकों और नुकसान की ठीक ठीक जानकारी भी मुहैया कराएं, ताकि हम उन लोगों को मदद कर सकें जिन्हें इसकी जरूरत है। ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के जिले शांगला के लिए हवाई दौरे पर निकल गए हैं, जहां सोमवार के भूकंप में कम से कम 50 लोगों की जानें चली गई थी। सोमवार को आए 7.5 अंकों की तीव्रता वाले इस भूकंप का स्रोत सतह से तकरीबन 212 किलोमीटर अंदर था, जिसके चलते इसका असर इतनी तेज भूकंप की तुलना में औसतन कम हुआ है। ऐसे में अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मारे गए लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा। उधर मिगोरा के नजदीकी शहर में कई घायल लोगों को अस्पताल में लाया गया है, जिनमें से कई लोगों की हादसों में टांगे या बांह टूट गई है। उत्तर पूर्वी स्वात घाटी में एक अस्पताल में भर्ती गुल अहमद बताते हैं कि भूकंप के समय क्या हुआ था।
स्वात में न्यू रोड पर काम कर रहा चावल की दुकान पर, तो फिर दौड़ा वो दूसरी साइड पर, फिर तो वापस ऊपर से बिल्डिंग गिर पड़े और मैं उसमें फंस गया दोनों पैर। मेरे साथ दो तीन आदमी और भी थे, पता नहीं थे। फिर रात को एम्बुलेंस के जरिए इधर पहुंचा।
जानू राव अफगानिस्तान में कंसर्न वर्ल्डवाइड नाम की एक चैरिटी संस्था के निदेशक हैं। वे कहते हैं कि इस बात का आकलन किया जाना अभी बाकी है कि भूकंप का कितना असर हुआ है। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक तकरीबन 1:40 पर आया और 5 के आसपास अंधेरा होना शुरू हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा आकलन अभी नहीं हो पाया है। और फिर वे इलाके भी हैं जो तालिबान की वजह से सुरक्षित नहीं है, वहाँ से भी आकलन नहीं हो पाया है। इसके अलावा यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ काबुल में ही तापमान तकरीबन 4 तक पहुँचा हुआ है, वहाँ ऊंचे इलाकों में तो ये इससे भी ज्यादा ठंडा होगा। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम वहाँ तंबू, कंबल और गर्म कपड़ों की मदद कैसे पहुँचाएं। ये थे कंसर्न वर्ल्ड वाइड के जानू राव के शब्द। भूस्खलनों के चलते सड़कों के बाधित हो जाने की वजह से भी राहत कामों में काफी दिक्कत आ रही है। भूकंप के बाद इन इलाकों में कुछ प्रभावित लोग कड़कड़ाती ठंड में दूसरी रात भी छत के बिना ही गुजारने की तैयारी कर रहे हैं।
भूकंप में मरने वालों की संख्या 350 के पार पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव बुधवार को होगा। 6 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 1,45,00,000 मतदाता 808 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में करीब 1,45,00,000 मतदाता कुल 808 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बुधवार को करेंगे। सूबे के 6 जिलों सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में 243 सदस्यीय विधानसभा की 50 सीटों पर मतदान होनी है। इस चरण में जिन मुख्य प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है, उनमें पहली बार राजनीतिक पाली खेलने वाले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के 2 बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मुख्य हैं। इनके अलावा नीतीश सरकार के 2 मंत्री श्रवण कुमार और श्याम रजक समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वृषिण पटेल चुनावी मैदान में हैं। हालांकि चुनाव के एक दिन पहले राज्य में सियासी सरगर्मी खूब तेज रही। दो चरणों तक सियासत से दूर रहने वाली राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने इस चुनाव में अपनी पहली पारी खेली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी।
आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का नौबतपुर का खास करके मैं जिक्र करना चाहती हूँ। मेरे लिए जिन शब्दों का चयन किया और जिस भाषा का प्रयोग किया, खास करके एक महिला के लिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लालू जी ने अपनी बेचारी बेटी को सेट करने की कोशिश की। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी बताएं कि किस संदर्भ में मुझे बेचारी कह रहे हैं।
पर्सनालिटी वॉर से शुरू हुई बिहार की राजनीति आज शाम होते होते व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुँच गया। लालू प्रसाद ने भी अपनी बेटी की बातों का जमकर समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी पर बरसे।
हिंदुओं का आरक्षण काटके लालू नीतीश मुसलमानों को देना चाहता, इस आदमी को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। कैसे देश का प्रधानमंत्री बैठा, कैसे देश
दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इस चुनाव में सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, साथ ही आरोपों का करारा जवाब देने से भी नहीं चूक रहे हैं। लालू प्रसाद के आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद हुकुमदेव नारायण यादव देते हैं।
वो राजनीतिक प्रलाप कर रहे हैं, कोई तार्किक बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री अब जात बताते हैं, तो लालू प्रसाद यादव बार बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी जात बतावे, क्यों पूछते हैं।
तमाम सियासी बयानबाजी के बीच चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। अब देखना यह है कि पहले दो चरणों की तरह पार्टी नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का आम मतदाताओं पर कितना असर होता है और किस गठबंधन के लिए मतदाताओं के बीच कितनी गोलबंदी होती है। यह सब कुछ 8 नवंबर को मतगणना के दौरान तय हो जाएगा। नीरज सहाय, BBC, पटना।
बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन वोट बैंकों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित है जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नियंत्रण करने का दावा करते हैं। इसे देखते हुए एनडीए में मांझी की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की और पूछा कि पहले दो चरणों में एनडीए का क्या कुछ दांव पर है।
हम कह सकते हैं कि फर्स्ट चरण जहां 49 सीट थे, एनडीए को कम से कम मिलेगा तो 32-33 सीट मिलने जा रहा है, और सेकंड चरण में जब हम 32 सीट पर लड़े हैं तो कम से कम एनडीए को 25-26 सीट मिलने जा रहा है, यानी 81 सीट में लगभग हम लोग 60 सीट प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए को 2/3 मेजोरिटी मिलने जा रही है आगामी चुनाव में।
सर, दूसरे चरण के बाद, दो चरण के बाद कहा यह गया कि एनडीए में थोड़ा पैनिक है और एक स्ट्रेटजी मीटिंग भी हुई थी, तो क्या कोई रणनीति में बदलाव भी आया या पैनिक था ऐसा?
कोई पैनिक नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और दूसरी बात है कि जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं वो कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, वो सेंटिमेंटल मुद्दा उभारना चाहते। और जैसे गोमांस की बात कर दिए, शैतान आता है इसकी बात कर दिए, DNA का मामला किया, आरक्षण का मामला किया, और अभी आप देख रहे हैं कि कहाँ जलाया गया एक बच्चा, उसके चलते जो बातें हुई जनरल BK सिंह की बात है उसका एक मुद्दा बनाया। इसका मास पर बहुत कोई इफेक्ट है ऐसा है नहीं, लेकिन वो मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही सेंटिमेंटल मुद्दा बना करके आज तक वो लोग 25 साल सत्ता में रहे, वरना विकास का काम और विकास का नाम तो लेना नहीं चाहते हैं, अगर लेते भी हैं तो करते नहीं हैं। आप देखिएगा ये जो बिहार का चुनाव होगा ये चौंकाने वाला चुनाव होगा, जितना हम लोग आशा कर रहे हैं उससे ज़्यादा सीट मिलने वाली है।
जैसे VK सिंह का आपने जिक्र किया, VK सिंह के बारे में आपने भी मांग की थी कि उन्हें हटाया जाना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बयानबाजी में भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेताओं को थोड़ा संयम बरतना चाहिए?
हम मानते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कहा, हालांकि
प्रधानमंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया आपको?
नहीं, कोई वैसी बात नहीं, हमने मीडिया के माध्यम से उनको कहवाया है, और जाहिर रही बात की बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने क्लारिफिकेशन किया कि भाई हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, और उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। खेद करना बड़ी बात, व्यक्त करना भी बड़ी बात है, सख्त परंपरा है, लेकिन घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, इसमें कोई शक नहीं, और वो घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। गलत काम है, सही बात है, नहीं होना चाहिए वैसे, या नहीं बोलना चाहिए वैसे, मैं मानता हूँ। लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में जो इन लोग मुद्दा बनाया, मुद्दा बनना चाहिए विकास का, मुद्दा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको भत्ता देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए।
जितना माझी जी, आपको नहीं लगता कि जो सीटों को लेकर आपकी आशंका थी और आपका विरोध था, आपको कम सीटें मिली?
देखिए, हम विश्वास करते हैं वर्ड पर, वचन पर। जब हम लोगों ने उनको वचन दे दिया था कि अनकंडीशनल समर्थन देंगे हम आपको, तो अनकंडीशनल समर्थन दे रहे हैं। ये भी उनको कहा था कि ज़्यादा सीट इसलिए मैं नहीं मांग रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन NDA जीते ये हमारी भी चिंता है। तो ज़्यादा सीट दीजिएगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम सीट दीजिएगा हानि होगा आपको। इसके बावजूद भी सारा तंत्र उनको था और उन्होंने हमको 21 सीट दिया। हम तो सेटिस्फाइड हैं, हम तो वचनबद्ध हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते।
आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन आपने कई बार संकेत दिया है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी आपको तरजीह देते हैं और रैली में बगल में बिठाते हैं, इसका भी एक संकेत है?
वो संकेत को मैं संकेत नहीं मानता हूँ, वो दूसरे कारण से भी हो सकता है कि यदि उधर से अगर ऑफर आएगा कि जीतन मांझी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मांग नहीं होगी, हम उसका कैंडिडेट अपने को अभी नहीं मानते हैं।
राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, और ये भी कहा जा रहा है कि आफ्टर पोल आपकी एक महती भूमिका हो सकती है, तो क्या एक राजनीतिक परिदृश्य ये भी है क्या कि भविष्य में आप महागठबंधन की ओर भी जा सकते हैं, जनता दल यू की ओर?
पहले मैंने कहा एक बात को, उस पर आप गौर फरमाइए, कि जीतन मांझी इज द मैन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स देता है वो करता है, हमारी मान्यता है। जिस गठबंधन के लिए हमने काम किया है, आज काम कर रहे हैं, हम उसकी मजबूती के लिए बात करेंगे, और जिसके खिलाफ लड़कर के हम यहाँ पर आए हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पद का भी हमको लोभ देगा तो कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट उनसे नहीं होगा।
वैसे मतलब कैंपेनिंग के क्रम में, इतनी राजनीतिक गतिविधियों के बीच में, जीतन राम मांझी के दिमाग में क्या चलता रहता है?
हमारे दिमाग में, चूँकि आप जानते हैं हम 70 वर्ष की उम्र के हो गए, हम समझते हैं कि मेरा राजनीतिक पड़ाव का अंतिम समय है, हम 70 और 75 से ज़्यादा राजनीति में अपने को नहीं रखेंगे, और हम चाहेंगे कि समाज के अन्य लोग भी 75 वर्ष के आयु के बाद पॉलिटिक्स में न रहे।
आखिरी सवाल सर, आप पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है, इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ, जिसको कहा जाता है, हम लोग मगह में कहते हैं कि सब धन सढ़ेवाइस पसेरी नहीं होता है, माने हर चीज़ को एक एंगल से दीजिएगा तो नहीं होगा। आप पेपरों में, मीडिया में तो देख रहे हैं कि बिहार में पुत्रों में जो सबसे क्वालिफाइड कोई है तो हमारा बेटा संतोष कुमार है, तो क्वालिफिकेशन में भी उसकी कोई शानी नहीं। दूसरी चीज़, 1998 से वो राजनीति में है, वो भाजपा का रेगुलर मेंबर था, तो आई एम प्राउड ऑफ माय सन।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। दिल्ली स्थित केरल हाउस में भैंस का मांस मेन्यू में शामिल किए जाने पर विवाद छिड़ गया है। केरल के मुख्यमंत्री उमन चांडी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों के नेतृत्व में केरल हाउस में छापामारी की गई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने केरल हाउस में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई संघीय ढांचे के खिलाफ है। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
केरल हाउस की कैंटीन का माहौल आज दूसरे दिनों से अलग है। कैंटीन के मेनू से बीफ गायब है। बीफ यानी भैंस का मांस।
मीन करी, फिश करी। अभी ये बताइए, बीफ इस पे से हटा दिया आप लोगों ने? बीफ है अभी नहीं?
कल भी नहीं है।
कल भी नहीं था?
यह है कैंटीन में तैनात कर्मचारी जो बता रहे थे कि सोमवार की दोपहर दिल्ली पुलिस के लोग कैंटीन पहुंचे थे और बीफ के बारे में छानबीन कर रहे थे। इस कार्रवाई से केरल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। CPM के सांसदों ने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ केरल हाउस में प्रदर्शन किया।
जिंदाबाद,
इंकलाब जिंदाबाद,
इंकलाब जिंदाबाद,
इंकलाब जिंदाबाद,
चरकू नंगल।
इन्हीं सांसदों में से एक श्रीमती का कहना था कि दिल्ली में भैंस के मांस पर प्रतिबंध नहीं है और अगर कैंटीन में वो परोसा जा रहा था तो वो गलत नहीं।
The meat is brought from the market. They are not killing.
मांस बाजार से लाया जा रहा है, यहाँ खुद से कोई जीव हत्या नहीं कर रहा है। ये गौमांस नहीं है बल्कि भैंस का मांस है। जब दिल्ली में गौमांस पर प्रतिबंध है तो फिर पुलिस ने इसके पहले छानबीन क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस को चाहिए था कि वो दिल्ली में केरल के स्थानीय आयुक्त से बात करते और फिर छापामारी करते।
सीपीएम की राज्यसभा में सांसद सीपी नारायणन ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई दरअसल संघीय ढांचे पर हमला है।
ए क्वेश्चन ऑफ फेडरल रिलेशंस, दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यू कैन से द एंबेसडर्स ऑफिस ऑफ आवर।
यह सवाल संघीय रिश्तों का है, मतलब राज्य और केंद्र सरकार के रिश्तों का। यह केरल सरकार का भवन है, यहाँ केरल के दूत या केरल की सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं। किसी को कुछ पूछना हो या कोई कार्रवाई करनी हो तो उससे पहले इस भवन के मुखिया से बात करनी चाहिए। वो यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक नहीं कर सकते। यहाँ काम करने वाले केरल सरकार के कर्मचारी हैं।
वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी का कहना था कि जो कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया है वो कानून के दायरे में ही किया है।
दिल्ली पुलिस का जो भी अफसर वहाँ पर इंक्वायरी के लिए गया था वो अपने कानूनी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए गया था, और इस प्रकार की पीसीआर कॉल अगर आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ पे जाके इंक्वायरी की जाए।
केरल हाउस की कैंटीन के मैनेजर चंद्रा उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त दिल्ली पुलिस का दल सोमवार को वहां पहुंचा था।
पूछ भी रहे थे कि वो चेक करना जा रहे तो अंदर गए, चेक किया तो उनको कुछ मिला। पूछने लगा ये बीफ एंड क्या है ये, तो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट ना, बीफ मींस बफेलो इज नॉट गाय एंड ऑल, और जो दुकान है एनडीएमसी ऑथराइज्ड, जैसे आपका निजामुद्दीन हो गया, वहाँ से आते हैं बफेलो, आते हैं हम प्रिपेयर करके दे रहे हैं। यहाँ कोई स्लॉटर हाउस नहीं है कि हम कहीं गाय को लेके फिर काटो, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, जो मार्केट में अवेलेबल हम दे रहे हैं यहाँ पर।
हालांकि मामला ठंडा हो गया है और केरल हाउस की कैंटीन के मेनू से बीफ शब्द हटा दिया गया है, मगर सोमवार की घटना ने राजनीतिक तुल पकड़ना शुरू कर दिया है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि आलोचना करने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, दिल्ली पुलिस की कमान जिनके हाथों में नहीं है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
गीता की भारत वापसी के बाद भारत में फंसे हुए एक पाकिस्तानी लड़के मोहम्मद रमजान को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। 15 वर्षीय रमजान अपनी माँ से उस समय अलग हो गया था जब उसके पिता उसे अपने साथ बांग्लादेश ले गए और वहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। रमजान ने 2011 में वापस पाकिस्तान जाने के लिए सीमा पार की थी, लेकिन वो भारत में ही फंसकर रह गया था। भोपाल से शुरे नियाजी की रिपोर्ट।
भारत की गीता की पाकिस्तान से वापसी के बाद पिछले दो सालों से भोपाल में रह रहे 15 साल के रमजान के लिए भी उम्मीदें बंधी हैं कि वो भी जल्द अपने वतन पाकिस्तान वापस जाएगा। भोपाल में रमजान का ठिकाना संस्था आरंभ का बाल गृह उम्मीद है। भारत सरकार ने रमजान से संबंधित फाइल को एक बार फिर खोला है ताकि उसको भेजने की कार्रवाई की जा सके। पाकिस्तान के मानव अधिकार कार्यकर्ता अंसार बरनी भी इस कोशिश में लगे हैं कि रमजान को जल्द से जल्द बुलाया जा सके। आरंभ संस्था के निदेशक अर्चना साहे का कहना है,
स्थिति तो बस यही है कि अभी इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन को भेजे थे, और अच्छी खबर ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट करने के बाद उनका फोन आ गया है मेरे पास वहाँ के काउंसलर का, और उन्होंने कहा कि हमने पूरी बातचीत कर ली है, और इसकी बहन और माँ के जो नंबर मैंने उनको दिए थे उन्होंने वहाँ पे भी बातचीत कर ली है। तो उन्होंने कहा कि हम सारे डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान भेज रहे हैं दिल्ली एक्सेप्ट, तो वहाँ की नेशनैलिटी को लेकर पहले किसी को काम करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी अंसार बरनी ट्रस्ट ने ले ली है। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि इसके दादा दादी नाना नानी के नेशनैलिटी के रिकॉर्ड मिल गए, वो उन्होंने भेज दिए हैं मेरे पास में।
रमजान के भारत आने की कहानी भी बिल्कुल अलग है। रमजान कराची का रहने वाला है। रमजान के पिता तलाक के बाद कुछ साल पहले पाकिस्तान से लेकर उसे बांग्लादेश चले गए थे और वहां पहुंचकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद अपनी सौतेली माँ से परेशान होकर वो बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत पहुंच गया। उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर रहकर भोपाल आ गया। रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए वो आरंभ संस्था के पास पहुंच गया। उसके बाद अक्टूबर 2013 से भोपाल ही उसका ठिकाना है। रमजान ने भारत आने के बारे में कुछ इस तरह बताया,
मम्मी पापा के तलाक होने में मेरे जो पापा है जो भी बनाए, इसके बाद मुझे मेरे को तब
अखन मेरे को पता नहीं था कहाँ लेके जा रहे पापा। फिर मेरे को बांग्लादेश लाए थे, मैं बांग्लादेश में जो दूसरे शादी करे थे, जो सौतेली मम्मी थी मुझे बहुत तंग करती थी। तंग करने के बाद मेरे पापा ने एक दिन गुस्से में बोला तू चला जा घर से। फिर मैं चला गया। एक दिन मेरे कई भी दोस्त घर में रहा। फिर अगले दिन मैं आया घर में, पापा ने बोला तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। फिर ये कह के मेरे को भगा दिया वहाँ से। फिर से फिर मैं मज़ार में चला गया, दरगाह में वहाँ रहे 3-4 महीने रहा। फिर एक नाम शहीदुल्ला भाई था, उनने मेरा मदद करा। उनने बताया कुमिल्ला साइड में हमने ये खुल के बताना, वो तेरे को पाकिस्तान में जा देंगे। मैं वहाँ गया, खुल के मैंने बताया मैं मेरे मम्मी पाकिस्तान में रहती है, मेरी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ, जो सौतेली मम्मी मुझे बहुत तंग करती है। फिर उन्होंने रात को जिससे भी पैसे ले पाए उतने पैसे लेके मुझे सुबह रवाना कर दिया, बॉर्डर पार करवा दिए थे। बॉर्डर के पास लाया, एक नदी पड़ रहा था, नदी पड़ रहा था, नदी पड़ने के बाद एक नाव था, नाव से पार करा के मुझे इंडिया में लाया गया। इंडिया में इंडियन पैसे देके मुझे कौदमतुली की गाड़ी में बिठा दिया।
रमजान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण अब तक उसकी वापसी की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं, लेकिन अंसार बरनी ने रमजान के नाना नानी से संबंधित कुछ कागजात भारतीय अधिकारियों को भेजे हैं, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि रमजान जल्द ही पाकिस्तान जा सकेगा। शुरह न्याजी, BBC भोपाल।
और अब बारी है खेल समाचारों की।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की, जहाँ गलत वजहों से भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा कई दिनों से सुर्खियों में है। महिला से मारपीट के मामले में अमित मिश्रा को आज बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। मिश्रा को पिछले महीने एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने समन जारी किया था, जिसके बाद आज मिश्रा पुलिस के सामने पेश हुए। शिकायतकर्ता ने मिश्रा पर उनके साथ मारपीट और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मामला दर्ज कराया था, जिसे वापस ले लिया गया है। मिश्रा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में रखा गया है। और अब बात तीरंदाजी की। मेक्सिको सिटी में हुए तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में 2 रजत पदकों के साथ भारतीय दल आज भारत लौट रहा है। देश की शीर्ष तीरंदाज दीपिका कुमारी को इस प्रतियोगिता में रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। पिछले 5 वर्षों में ये उनका 4th रजत पदक है। 5 प्रयासों में अपना पहला स्वर्ण जीतने की कोशिश में मैदान पर उतरी दीपिका ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल आसानी से जीते, लेकिन खिताबी मुकाबले में भारतीय तीरंदाज दुनिया की नंबर 1 और टूर्नामेंट की शीर्ष वरीय चोई मिसून के हाथों 2-6 से हार गयी। दीपिका के स्वर्ण गंवाने से हालांकि भारतीय तीरंदाजी संघ ज्यादा परेशान नहीं है। संघ के महासचिव अनिल मानेनी कहते हैं,
नहीं, दीपिका का इसमें कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको जैसे पता है लास्ट ईयर उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ठीक नहीं था, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है एंड शी इज बैक इन फॉर्म और अब शी इज गोइंग बैक इनटू द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म। जैसे वो भी कहती हैं कि शी हैज बिकम बहुत ही मैच्योर हो चुकी हैं एंड शी नोज कहाँ पे क्या करना है और उसके ओपोनेंट्स कौन है उसको ठीक पता है, तो उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रही है, मेंटल ट्रेनिंग बहुत ही कर रही है, मेंटल ट्रेनिंग है, फिर फिजिकल कंडीशनिंग भी है और ये सब उसको बहुत ही यूजफुल होगा अपने आगे वाले टूर्नामेंट्स में।
दीपिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 2 ही स्वर्ण 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स और 2012 अंताल्या विश्व कप में जीते हैं। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए 2रा रजत दिल्ली के तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में जीता। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी जिले शांगला में पहुंचे हैं। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से अपील की है कि वे एक दूसरे की मदद करें। दोनों देशों में करीब 350 लोग कल आए भूकंप में मारे गए हैं। चीन का कहना है कि उसने साउथ चाइना सी में अपने एक द्वीप के करीब आए एक अमरीकी युद्धपोत का पता लगाया और उसे चेतावनी भी दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमरीकी राजदूत को इसका विरोध दर्ज करने के लिए तलब किया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि प्रवासियों और शरणार्थियों का संकट यूरोपीय संघ की एकजुटता पर प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की जन कल्याण संस्था मेडिसिन सान फ्रंटियर का कहना है कि उत्तरी यमन में उसका एक अस्पताल सऊदी अरब के नेतृत्व में हुए हवाई हमलों का निशाना बना है। हालांकि इन हमलों में कोई नहीं मारा गया। सीरिया से खबर आ रही है कि इस्लामिक स्टेट ने रविवार को पलमायरा के 3 प्राचीन खंभों से बांधकर 3 लोगों को बम से उड़ा दिया। बीबीसी समाचार।
दिन भर का समय समाप्त हुआ जाता है। तकनीकी पक्ष के इंचार्ज थे तिलक भाटिया। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।